Hare Krishna. पिछली बार रामायण में चर्चा कर रहे थे कि कैसे कैकेयी के कहने पर भगवान कौशल्या से मिलने गए। कैकेयी को तो वचन दे दिया कि ठीक है, अभी आज ही चला जाऊंगा वन में आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता के धर्म का पालन करने के लिए, पिता के धर्म की रक्षा करने के लिए। और फिर वहां से कौशल्या के पास आए। कौशल्या को जब बताया कि कैसे पिता ने भरत को राज्य दे दिया है और मुझे दंडकारण्य वन में जाने का आदेश दिया है, तो कौशल्या बहुत दुखी हुई। कौशल्या सोचने लगी कि इतने वर्ष तक ये आशा मन में थी कि एक दिन राम को राजा बने देखूं, लेकिन अब वो इच्छा भी शायद पूरी नहीं होगी। बहुत समझाया कौशल्या ने, लक्ष्मण ने भी बड़ा क्रोश प्रकट किया, लेकिन श्री रामचंद्र ने कौशल्या को समझाया स्त्री धर्म क्या होता है। कौशल्या कह रही थी कि मैं भी साथ में चलती हूं, जब तुम यहां नहीं रहोगे तो फिर मेरे लिए क्या कार्य है। लेकिन राम ने कहा नहीं, एक स्त्री के लिए उसके पति के साथ रहना बहुत आवश्यक है। अगर एक स्त्री अपने पति की सेवा करती है तो निश्चित है उसको सद्गति प्राप्त होती है, केवल सेवा मात्र से। अगर वो भक्ति भी ना करे, अगर वो अपने पति की सेवा करती है उसको ही परम धर्म मानते हुए, तो भगवान कहते हैं उसको सद्गति प्राप्त होती है। तो कौशल्या मानी नहीं। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध आया। लक्ष्मण कहने लगे, अभी जाकर हत्या कर देता हूं दशरथ की, ये कामुक हो गया है, स्त्री से आसक्त हो गया है। एक स्त्री के कहने पर निर्दोष राम को वन में भेज रहा है, वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया है, मार डालना चाहिए। राम ने समझाया हमारे पिता हैं। लक्ष्मण ने कहा कि अगर गुरु पिता अपने पद से गिर जाए तो वो वध्य हैं, उनका वध करा जा सकता है। और जब लक्ष्मण इतना क्रोध प्रकट कर रहे थे तो भगवान राम ने बहुत सुंदर ज्ञान दिया। इसका वर्णन अध्यात्म रामायण में आता है। भगवान लक्ष्मण को समझाने लगे, ये क्रोध करने का समय नहीं है। तुम जिस भोग की बात कर रहे हो, ये तो भोग कुछ ही समय तक रहता है और फिर चला जाता है, जैसी हमारी छाया, कुछ समय तक रहती है। प्रकाश है, थोड़ी बहुत छाया दिखती है, या फिर ये जो भोग करने की इच्छा है, ये युवा अवस्था है, ये लहरों के समान है। नदी में कितनी ही लहरें आती हैं लेकिन कितने क्षण रहती हैं। श्री राम कहने लगे कि लक्ष्मण, भोग तो छोड़ो, हमारा जीवन ये पानी की उस बूंद की तरह है जो जलते हुए तपते हुए लोहे पर पड़ी है। अगर गर्म लोहे पर एक पानी की बूंद हो तो कितने समय रहती है, बहुत जल्दी वाष्प बनकर उड़ जाती है। तो भगवान कहने लगे, हमारा जीवन ही इतना है। और वो समझाने लगे कि ये मनुष्य बहुत संघर्ष करता है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को, बंधुओं को इत्यादि बनाए रखने के लिए, लेकिन ये सारे जो बंधु हैं, ये जो सारे संबंध हैं, क्षणिक हैं। उदाहरण देते हैं श्री राम, जब हम लोग यात्रा में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं सफर में, तो एक स्थान पर आते हैं, बहुत से अन्य यात्री हमें मिलते हैं, हम कुछ समय उन यात्रियों के साथ रहते हैं और फिर अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं, या फिर कुछ घास के तिनके जल के बहाव के साथ साथ में आ जाते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण श्री राम ने दिया लक्ष्मण को। जानते हो इस जगत में जो भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं वो कैसे हैं? एक मेंढक के समान, ऐसा मेंढक जो एक सर्प के मुख में है, अर्थात बस कुछ ही क्षण है, मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो अपना आहार ढूंढ रहा है। वो मेंढक सोच रहा है कि मुझे कैसे खाने को मिल जाए, मृत्यु से बचने की बात नहीं सोच रहा। इसी तरह मनुष्य इस जीवन में जो संघर्ष करता है, काल रूपी सर्प के मुख में है लेकिन भोग की वांछा करता है, भोग की कामना करता है, अपनी प्रत्यक्ष मृत्यु को नहीं देखता, सामने मृत्यु को नहीं देखता। जिसके मुख में है काल रूपी सर्प के, उसको नहीं देखता। इसलिए वो कहने लगे कि ये अविद्या है, ये जो शरीर है इसके परे आत्मा है, उस सत्य को जानना ये विद्या है। और जो व्यक्ति जब तक अविद्या में रहता है वो मोक्ष प्राप्ति नहीं करता। मोक्ष प्राप्ति लक्ष्मण वो व्यक्ति करता है जो विद्या को प्राप्त करता है। और विद्या प्राप्ति में क्या बाधाएं हैं? काम और क्रोध। और उसमें भी क्रोध बहुत शक्तिशाली है। वो कहने लगे कि इस जगत में जिन व्यक्तियों को जो कुछ भी मिलता है, किसी को राज्य मिलता है, किसी को वन मिलता है, किसी को कुछ और मिलता है, ये सब कर्मों का फल है, कर्मों के अनुसार मिलता है। इसीलिए लक्ष्मण, कर्म के द्वारा ही हमें भी जो मिल रहा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। दशरथ महाराज या कैकई, ये तो निमित्त हैं। वैसे हमको एक बात जाननी चाहिए कि भगवान कर्मों के अधीन नहीं है। यहां तो केवल एक साधारण मनुष्य को ज्ञान देने के लिए ये बातें कह रहे हैं। भगवान कर्मों के परे हैं, तीनों गुणों के परे हैं, त्रिगुणातीत हैं, इसलिए उन्हें कर्म का नियम नहीं लगता। वैसे भगवान जानते थे कि ये तो होना है, लेकिन कर्म से नहीं। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, नमे कर्माणि लिम्पन्ति, मैं कभी कर्म में फंसता नहीं हूं अर्जुन, क्योंकि ये कर्म तो उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपना शाश्वत जीवन त्याग दिया है। कर्मों के फल उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपना शाश्वत जीवन त्याग दिया है, भगवान को त्याग दिया है, शाश्वत धाम को त्याग दिया है। कभी आप लोग कल्पना कीजिएगा, भक्तों के रूप में हम लोग कई बार वर्णन करते हैं आध्यात्मिक जगत, भगवान का धाम, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। लेकिन कभी एक समय ऐसे ही बैठकर चिंतन कीजिएगा उस धाम का, जहां हम सब थे, जहां की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ये नहीं कि वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी बात है उस धाम के लिए। ये भी नहीं कि व्यक्ति को कर्मों का फल नहीं मिलता, ये भी नहीं कि वहां दुख नहीं है, ये भी नहीं कि वहां कल्प वृक्ष हैं, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये धाम का वैशिष्ट नहीं है। धाम का वैशिष्ट है श्री कृष्ण की सतत सेवा, ये धाम है। इसलिए अगर हम उस धाम की चेतना में रहना चाहते हैं, हम उस धाम का अनुभव करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि धाम क्या है, हम क्या थे, क्या स्वरूप था हमारा, कहां थे, सतत सेवा करनी चाहिए। ये धाम का वैशिष्ट। भक्त धाम क्यों जाना चाहता है? आनंद लेने के लिए नहीं, पापों से दूर जाने के लिए नहीं, दुखों से दूर जाने के लिए नहीं। ये तो भक्त प्रेम से स्वीकार करता है। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, उसके लिए फिर दुख क्या है? हम लोगों ने सुना है कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जीवन समर्पित किया देश के लिए और प्राण दे दिए, हंसते हंसते फांसी का फंदा अपने गले में लगा लिया। तो जब एक भौतिक स्तर पर रहने वाला व्यक्ति, देश को ही सर्वस्व मानने वाला व्यक्ति जीवन समर्पित करके हंसते हंसते अपने प्राण देता है, तो क्या वो भक्त जो श्री कृष्ण को आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक धरातल पर समर्पण करते हुए उनकी सेवा करता है, तो थोड़े बहुत कष्टों को स्वीकार नहीं कर सकता? इसलिए भक्त धाम इसलिए नहीं जाना चाहते कि उनको कष्ट है यहां पर, दुख है यहां पर। भक्त धाम जाते हैं क्योंकि भगवान की सेवा में बाधा नहीं है, वहां पर सतत सेवा है। बस यही एक कारण है भक्तों का धाम की कामना करने का। अन्यथा जहां भक्त हैं वही धाम है, क्योंकि शुद्ध भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं, और जहां भगवान है वही धाम है। तो लक्ष्मण को ये समझाने लगे कि लक्ष्मण ये सब कर्म से है, ये ऐश्वर्य, ये भोग जिसकी कामना जीव कर रहा है, जिसके लिए संघर्ष कर रहा है, ये क्षणिक है, समाप्त हो जाने वाला है। मोक्षकामी पुरुष के लिए ये सब आवश्यक नहीं है, वांछित नहीं है। इसीलिए इस क्रोध को त्याग दो, क्योंकि क्रोध बाधा है, काम बाधा है। एक मूर्ख व्यक्ति होगा जो ये जाने कि मेरी सफलता में कोई चीज बाधा है, लेकिन मैं उसे त्याग नहीं सकता। ये मूर्खता है। हमारे और भगवान के बीच में काम और क्रोध, ये बाधा है, लेकिन हमारी आसक्ति इतनी है इस काम से, इस क्रोध से, कि हम त्यागना नहीं चाहते। इसलिए जब सन्यास लिया जाता है तो त्रिदंडी सन्यास कहलाता है, वैष्णव सन्यास, मनसा कर्मणा वाचा। केवल शब्दों से नहीं, केवल बाहरी शारीरिक स्तर पर नहीं, मनसा, आज समाज में हम लोग देखते हैं कई सन्यासी हैं, तथाकथित सन्यासी जो भगवा धारण करते हैं। कोई लाभ नहीं है बाहरी तौर से भगवे को धारण करने का। भगवा हृदय में होना चाहिए, वैराग्य हृदय में होना चाहिए। तो लक्ष्मण से कहा कि ये कर्म है, इसीलिए तुम क्रोध मत करो। फिर कौशल्या की ओर मुड़े। कौशल्या ने अभी तक अनुमति नहीं दी थी। श्री राम ने प्रार्थना की, स्वास्थ्य वाचन कराइए, मुझे जाने की अनुमति दीजिए। और जब कौशल्या ने देखा कि कोई उपाय नहीं है, राम को रोका नहीं जा सकता, कौशल्या ने कहा ठीक है। कौशल्या प्रार्थना करने लगी देवी देवताओं से श्री राम की रक्षा के लिए। कौशल्या कहने लगी कि इंद्र आदि देवता तुम्हारी रक्षा करें। भगवान की रक्षा देवता करें, भगवान आए हैं देवताओं की रक्षा के लिए। लेकिन मां का हृदय है, ये वही कौशल्या है जिसने जन्म के समय चतुर्भुज रूप का दर्शन किया था, ये वही कौशल्या है जिसने प्रार्थनाएं अर्पण की थी भगवान श्री राम को। याद होगा आपको, हम लोगों ने चर्चा की थी, समर्पण किया था कौशल्या ने, जानती है यही भगवान है। लेकिन एक मां का हृदय है कोमल, ममता से भरा हुआ, प्रार्थना कर रही है राम के लिए। मैं प्रार्थना करती हूं जितने भी हिंसक प्राणी हैं वन में, वो तुम्हें चोट नहीं पहुंचाए। जितने भी राक्षस हैं, असुर हैं, उनसे तुम्हारी रक्षा हो। मैं यहां पर कुबेर से, यमराज से, सूर्य से प्रार्थना करूंगी ताकि तुम वहां पर सुरक्षित रहो। ये बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। कोई कह सकता है कि अगर अयोध्या में बैठे हुए कौशल्या तपस्या करती है या प्रार्थना करती है या पूजा करती है, तो उसका लाभ वन में गए हुए राम को कैसे मिल सकता है? राम तो चले गए। ये सूक्ष्म विज्ञान है, ये भौतिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं करता। कई लोग कहते हैं कि जब किसी गए हुए व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको कैसे लाभ मिल सकता है? हम भगवान से किसी के लिए मांगते हैं, वो व्यक्ति कहीं पर है, उसको कैसे लाभ मिल सकता है? मिलता है, ये सूक्ष्म विज्ञान है। भगवान सबके हृदय में है, इसीलिए प्रार्थना करने लगी कौशल्या, कहने लगी मैं प्रार्थना करूंगी। हाँ, इतना सब कहते हुए आंखों से सतत आंसू बह रहे थे। मंत्रोच्चारण करने लगी, स्वास्थ्य वाचन में मंत्रोच्चारण होते हैं उस व्यक्ति के लिए जो जा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि इस समय केवल उसके होंठ हिल रहे थे, हृदय से इन मंत्रों का उच्चारण नहीं कर रही थी। जब मंत्रों का उच्चारण होता है तो केवल मुख नहीं हिलाना चाहिए, लाभ नहीं होता है मंत्रों का। मंत्र हमेशा हृदय से निकलने चाहिए, जैसे हम लोग महामंत्र कहते हैं, हृदय से आना चाहिए, पुकारना चाहिए, तब उसका सही लाभ होता है। हम लोग हर रोज सुबह बैठते हैं जप करने के लिए, हमारे होंठ हिलते हैं, कभी कभी कानों में सुनाई भी दे जाता है वो मंत्र, हृदय से नहीं आता। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि आज अर्थात इससे पहले जब भी मंत्रों का उच्चारण किया, हृदय से किया कौशल्या ने, लेकिन आज केवल होंठ हिल रहे हैं, हृदय में कोई आनंद नहीं है इन मंत्रों को उच्चारण से, क्योंकि इन मंत्रों के उच्चारण के द्वारा वो अपने प्राणों को वन में भेज रही है, श्री राम को वन में भेज रही है, इसलिए आज कोई आनंद नहीं। कौशल्या ने ऐसे ही मंत्रों का उच्चारण किया राम की सुरक्षा के लिए। वहां पर अन्य ब्राह्मण इत्यादि थे, वे भी सब मंत्रों का उच्चारण करने लगे, राम की सुरक्षा की बात करने लगे। और ऐसे में स्वास्थ्य वाचन पूर्ण हुआ और श्री रामचंद्र ने अब कौशल्या से अनुमति मांगी। कौशल्या अनुमति तो दे चुकी थी लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं थी। श्री राम बैठे थे मंत्र उच्चारण हो, कौशल्या खड़ी हुई और उन्होंने प्रदक्षिणा की श्री राम की। और फिर माँ है, जब जाने के लिए खड़े हुए तो माथा चूमा और बारंबार हृदय से लगा रही थी उन्हें। इच्छा नहीं हो रही थी कि राम चले जाए। ये प्रेम है, ये सच्चा प्रेम है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। क्या स्वार्थ था कौशल्या का श्री राम से प्रेम का? जब श्री कृष्ण सुबह सुबह वन में जाया करते तो यशोदा बहुत दूर तक छोड़ने चली जाया करती, बार बार पुकारा करती, हर रोज, एक दिन नहीं, हर रोज यशोदा भागती पीछे, कृष्ण तुम्हारी मुरली ठीक नहीं लगी है, थोड़ा सा लगा दे। फिर जाते, कृष्ण इधर आओ, तुम्हारे थोड़ा सा मस्तक पर जो बांधा है कपड़ा वो ठीक नहीं है, उसको ठीक कर दे। ऐसे करते करते प्रायः गांव के अंत तक पहुंच जाती, जहां कृष्ण कहते, मैया अब जाओ, वन प्रारंभ होने वाला है। और फिर बड़े भारी हृदय से पत्थर रख के कृष्ण को जाते हुए देखते, हर रोज। ये प्रेम है, ये हमें शाश्वतता का अनुभव कराता है। शाश्वतता किसे कहते हैं? हमने तो केवल ग्रंथों में यह शब्द सुना है, शाश्वत। अनुभव नहीं है, भूल चुके हैं उस अनुभव को। शाश्वत प्रेम क्या होता है? शाश्वत आनंद क्या होता है? शाश्वत सेवा क्या है? सबको भूल चुके हैं हम। इन लीलाओं से ये शाश्वत आनंद, शाश्वत प्रेम प्रकट होता है। जय श्री श्री राधा गोकुल आनंद। यशोदा प्रकट करा रही है, हर रोज वही आनंद, हर रोज वही प्रेम, कोई कमी नहीं। तो ऐसे श्री राम अब अनुमति लेते हैं कौशल्या से और फिर सीता की ओर जाते हैं, अपने महल की ओर जाते हैं। वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि जैसे ही ये स्वास्थ्य वाचन पूरा हुआ, राम ने उसी समय से वनवास ग्रहण कर लिया। अब केवल सीता को इसकी सूचना देने जा रहे हैं, इसलिए कोई रथ नहीं लिया, कोई चामर नहीं, कोई छत्र नहीं, कोई हाथी घोड़े नहीं, कोई वंदीजन नहीं, अकेले पैदल सीता की ओर चले, अपने महल की ओर चले। अब तक ये खबर फैल चुकी थी कि राम को वनवास होगा, सब लोग बातें करना प्रारंभ कर रहे थे। राम बाहर निकले, अब लोगों ने कोई उत्सव नहीं मनाया, अब सारे बात कर रहे थे कि क्या होगा, क्या राम वन जाएंगे, भरत राजा बनेंगे। लोग बड़े दुखी थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करें, रोएं, हंसें, उत्सव मनाएं राजा के, नए राजा का, या राम के वन जाने का शोक प्रकट करें। राम ऐसे ही पैदल चल दिए। सीता को अभी पता नहीं था, सीता महल में इंतजार कर रही थी कि राम गए हैं, सुमंत्र आए थे ले गए हैं, तो स्वाभाविक है कि सारी क्रियाएं हो रही होंगी, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही होगी। अभी राम आएंगे, आगे पीछे घोड़े हाथी वंदीजन उनका गुणगान करते हुए। मगर अचानक राम आए और आज राम के चेहरे पर वो आनंद नहीं था। राम का आनंद कम इसलिए नहीं हुआ था कि उन्हें वन में जाना पड़ेगा, राम का आनंद कम हुआ था कौशल्या के दुख को देखकर। सीता ने जब राम के मुख को देखा, घबरा गई, आश्चर्यचकित हो गई, पहली बार राम को ऐसे देख रही। सीता ने प्रश्न किया, क्या हुआ, आप ऐसे कैसे आए हैं? आज तो बड़ा शुभ मुहूर्त है, पुष्य नक्षत्र है, राज्याभिषेक होना है आपका, और आप ऐसे ही आ रहे हैं, कहीं छत्र नहीं है, चामर नहीं है, आज आप रथ पे नहीं हैं, आपके आगे पीछे हाथी घोड़े नहीं हैं, बंदीजन आपका बंदीजन गाते हुए नहीं चल रहे। देखिए, जब राजा या राजकुमार जाया करते थे तो कैसा एक उत्सव होता था। हमें जानना चाहिए, जब हम भगवान को लेके जाएं तो कितना बड़ा उत्सव करना चाहिए। तो क्यों नहीं है आज, सीता पूछ रही है बड़े आश्चर्य में। भगवान श्री राम ने कहा, मेरे पिता ने अयोध्या का राज्य भरत को दिया है और मुझे उससे भी बड़ा राज्य दंडकारण्य का दिया है। मुझे उन्होंने राजा बनाया है वन का, और इतना ही नहीं, आदेश है कि अभी मुझे जाना है, आज ही जाना है। और तुम्हारे लिए मैं ये कहता हूं कि तुम यहीं रहना, सेवा करना कौशल्या की। कौशल्या देवी बड़ी दुखी हैं, तुम उनकी सेवा करना, दशरथ की सेवा करना, अन्य रानियों की सेवा करना। और हां, एक बात ध्यान रखना, अब भरत राजा बनेगा, कभी भी भरत के सामने मेरा गुणगान नहीं करना। ये अच्छा नहीं लगता है एक राजा को या एक पुरुष को कि किसी दूसरे का गुणगान उसके सामने हो, तो इसलिए कभी मेरा गुणगान नहीं करना। अपनी सखियों के साथ भी जब हो और भरत वहां पर हो तो कभी मेरा गुणगान नहीं करना। देखिए कितना सुंदर सिद्धांत है ये। रामायण के वचन इतने प्रभावशाली हैं, अगर हम केवल एक एक वचन की चर्चा करें तो कई सालों तक रामायण पर चर्चा हो सकती है। भगवान ने कहा, राजा वो है मेरा गुणगान नहीं करना, ये तो पत्नी के लिए ठीक नहीं है। भले ही वो राजा हो, लेकिन पत्नी को तो पति का गुणगान करना चाहिए। लेकिन भगवान ने भक्ति का बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, विशेष करके ऐसी संस्थाओं के लिए जैसे हमारी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जहां कभी कभी हम लोग किसी को गुरु स्वीकार करते हैं, स्वामी स्वीकार करते हैं, और कुछ कोई और व्यक्ति किसी और को गुरु स्वीकार करता है, स्वामी स्वीकार करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, अगर प्रेम से रहना है, ये एक विषय आया इसीलिए इसकी चर्चा कर रहे हैं, अगर हम आपस में प्रेम से रहना चाहते हैं, किसी भी गुरु के शिष्य क्यों ना हो, लेकिन हमें अगर कोई और गुरु का शिष्य है तो उसके सामने अपने गुरु का गुणगान नहीं करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सभी भक्तों के लिए आवश्यक है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे किसी दूसरे, जैसे भगवान राम यहां कह रहे हैं कि वो किसी को अच्छा नहीं लगता है, तो हो सकता है किसी के हृदय में ऐसी बातें आए। तो जो हमारे स्वामी हैं वो हमारे लिए हैं, सीता के स्वामी राम हैं, वो सदैव रहेंगे, शाश्वत रहेंगे, सीता का प्रेम कम नहीं होगा उससे, लेकिन भरत के सामने गुणगान नहीं करना। इसी तरह हमारे गुरु हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारा प्रेम है उनसे, हम उनके निर्देशों के बिना, उनके आदेश के बिना, उनकी उनकी कृपा के बिना भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, ये सत्य है, लेकिन वो हमारे लिए है। लेकिन जब हम ऐसे स्थान पर, इसलिए संस्थाएं कलयुग में भक्ति अकेले करना बहुत कठिन है। हम ये नहीं सोच सकते कि मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे संग नहीं चाहिए, मुझे भक्त नहीं चाहिए, मुझे संस्था नहीं चाहिए, मैं अकेले ही भगवान की प्राप्ति करूंगा अपने बल पर, संभव नहीं। हाँ, पूर्व इतिहास में, पूर्व युगों में लोगों ने किया है, कलयुग में संभव नहीं। इसलिए हमें मिलकर रहना सीखना चाहिए। भगवान यहां एक बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं कि अगर हम सब मिलकर रहना चाहते हैं एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहते हैं, सहयोग की भावना से रहना चाहते हैं, तो ये सिद्धांत रखना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि कब कहां क्या बोलना है। तो श्री रामचंद्र ने कहा ऐसे भी ऐसे आचरण करना, और हां जब तक मैं वन में रहूं, मैं 14 वर्ष तक वन में रहूंगा, तुम उपवास करना, व्रतों का पालन करना। अभी हम कुछ समय पहले भागवत के तात्पर्यों में पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस पत्नी का पति घर से बाहर हो उसको श्रृंगार नहीं करना चाहिए, उसको किसी उत्सवों में शामिल नहीं होना चाहिए। तो रामायण में भगवान ने कहा इसको सीता देवी से कि मैं वहां रहूंगा तो तुम उपवास और व्रत करना और सबकी सेवा करना। सीता देवी ने जब ये सुना तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। एक तो वन में जा रहे हैं और दूसरा सीता को नहीं ले जा रहे हैं। तो सीता कहने लगी, सीता की आंखों में आंसू आ गए और सीता कहने लगी कि आप मुझे क्या इतना निम्न मानते हैं, इतना ओछा मानते हैं? ये जो आप कह रहे हैं ये सुनकर कोई भी हंसेगा इस बात को कि आप वन में जाएंगे और मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा कर्तव्य है आपकी सेवा करना। अहम अग्रे गमिष्यामि, कहने लगी मैं आगे जाऊंगी, आप ये नहीं सोचिए कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी। बहुत सुंदर बात सीता देवी ने कही। देखिए ये सेवा भाव, हम कहां किस तरह किस रूप में सेवा कर सकते हैं ये हमारी चेतना पर आधारित है। अगर हमारी चेतना सतत कृष्ण में लगी है तो हम हर अवसर को सेवा मानेंगे। सीता देवी इसका उदाहरण है। अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात तुम यशसी। अहम मैं अग्रे गमिष्यामि, मैं आगे जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? आगे कांटे होंगे, लताएं होंगी जिस पे जब आप चलेंगे तो आपको चुभेंगे, इसलिए मैं आगे चलकर उसको दबा दूंगी। सीता देवी कहती है इसको, मैं चलकर उसको दबाऊंगी आगे, ताकि आप जब चले तो आपको कष्ट ना हो। देखिए व्यक्ति कहीं भी सेवा को ढूंढ सकता है, अभी अवसर नहीं था, लेकिन सीता देवी की चेतना सदैव श्री रामचंद्र की सेवा में रहती है, इसलिए उन्होंने इसको भी सेवा का अवसर माना कि हाँ वन में जाना है ना, मैं पहले चलूंगी आगे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं, उन कांटों को दबा सकूं, उन पेड़ पौधों को दबा सकूं जो आपके पांव में चोट पहुंचाएंगे। श्री रामचंद्र के कमल, चरण कमल इतने कोमल हैं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सीता देवी जब आई, एक समय की एक कथा है किसी ने कही हुई कि सीता देवी आई विवाह होकर, रानियों ने पुष्प बरसाए, वो भी पंखुड़ियां, और जब सीता देवी चलने लगी तो टेढ़े मेढ़े चल रही थी। रानियां सोचने लगी क्या हुआ इसे, पूछा तो उन्होंने कहा ये जो फूल की पंखुड़ियां हैं चुभ रही हैं मेरे पांव में, इतने कोमल हैं सीता देवी के चरण, कि फूल की पंखुड़ियां उनके पांव में चुभने लगी, और उनसे भी कोमल थे श्री राम के कमल, चरण कमल। इसलिए सीता देवी कहने लगी अहम अग्रे गमिष्यामि वनम पश्चात, वन में मैं पहले जाऊंगी, पश्चात त्वम एष्यसि तब आप आइएगा। तो एक भक्त का भाव होना चाहिए, हमें अवसर खोजना चाहिए सेवा करने का, जहां सेवा मिले, चाहे दुख हो भी है। तो कितना बड़ा दुख था सीता देवी के लिए, सीता देवी को तो मूर्छित हो जाना चाहिए था, सीता देवी को तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन सीता देवी ने ऐसे समय भी अपनी चेतना को श्री कृष्ण श्री राम के चरण कमलों में रखा सेवा। इसलिए भक्त का ये सीता देवी एक भक्त के लिए आदर्श है, हर स्थिति में उन्होंने सेवा की। भागवत में प्रहलाद महाराज भक्ति की 9 विधियों का वर्णन करते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि। और जब हम लोग चर्चा करते हैं श्रवण के लिए परीक्षित महाराज, कीर्तन के लिए सुखदेव गोस्वामी, और स्मरण के लिए हम स्वयं प्रहलाद महाराज का नाम लेते हैं। रामायण में स्मरण का प्रत्यक्ष उदाहरण श्रीमती सीता देवी है, साक्षात उन्होंने प्रकट किया। एक क्षण भी श्री राम का स्मरण कम नहीं हुआ उनके मन से। इसीलिए आगे चलकर वो कहेंगे, जब अग्नि परीक्षा होगी और जब पृथ्वी में वो समा जाएंगे तब वो कहेंगे, कर्मणा मनसा वाचा यथा रामम समर्चये, कि अगर मैंने अपने कर्म, अपने मन, अपनी वाचा को श्री राम को समर्पित किया है, यथा हम राघवात अन्यम मनसापि न चिंतये, अगर मैंने अपने मन में भी कभी श्री राम के अलावा किसी और का स्मरण नहीं किया, तथा मे माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति, तो कृपया मुझे स्थान दीजिए, ऐसा वो पृथ्वी देवी से प्रार्थना करते। तो ये आदर्श है हमारे लिए। तो सीता देवी ने कहा मैं आगे जाऊंगी, और आपने ये सोचा कैसे, मेरा क्या अपराध है जो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। एक पत्नी का कर्तव्य है, पत्नी को पति के साथ रहना है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है, सीता देवी कहने लगी, मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, माता पिता ने सिखाया है कि अगर तुम्हें चुनाव करना हो बड़े बड़े महलों का, बड़े बड़े भोगों का, सिद्धियों का, सीता देवी ने यह वर्णन किया है, इसका अर्थ है कि उस समय ये जो सिद्धियां थी ये साधारण व्यक्तियों को भी प्राप्त होती थी। अणिमा लघिमा ये वर्णन करती हैं वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, सीता देवी वर्णन करती हैं कि मेरे माता पिता ने सिखलाया है कि अगर चुनाव करना हो बड़े बड़े महलों का, महलों में, भोगों में, अणिमा लघिमा महिमा सिद्धियों में, और अपने पति के चरण कमलों में, तो पति के चरण कमलों को चुनना, इन सब को छोड़ देना, ये मैंने सीखा है, इसलिए मैं वन में जाऊंगी आपके साथ। और अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो वैसे भी मेरे प्राण चले जाएंगे, और आप वन में जाकर कई लोगों का रक्षण करने वाले हैं, फिर एक मेरा क्यों नहीं, क्या आप मेरा रक्षण नहीं कर सकते, ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। सीता देवी ने सोचा शायद श्री रामचंद्र ये सोच रहे होंगे कि क्या खाओगी वहां पर। सीता देवी कहने लगी, जो भी आप कंदमूल खाएंगे उसका जो उच्चिष्ट आपका होगा मैं वही ग्रहण करके संतुष्ट रहूंगी, वही मेरे लिए अमृत के समान होगा। फिर उन्होंने सोचा शायद श्री राम सोच रहे होंगे कहाँ रहोगी, कहाँ सोओगी, वहां तो जंगल है, खाली घास घास होगी। तो वो कहने लगी कि जो घास का बिस्तर होगा वो मेरे लिए इन ऐश्वर्यशाली बिस्तरों से कहीं अधिक आरामदायक होगा, क्योंकि मैं आपके साथ होंगी। श्री राम ने फिर प्रयास किया, सोच रहे थे कि थोड़ा डराता हूं, सीता देवी से कहा तुमने वन देखा नहीं है, बड़े भयानक पशु होते हैं वहां पर, जब पर्वतों से तेज पानी गिरता है उसकी आवाज, और जब सिंह दहाड़ता है अच्छे अच्छों के हृदय विदीर्ण हो जाते हैं। और ये सत्य है, हम लोगों ने तो सुना नहीं है सिंह को दहाड़ते हुए। एक बार कभी बचपन में किसी चिड़ियाघर में देखा था, उसको सुना था जरा सा आवाज, लेकिन जब जंगल में शेर दहाड़ता है तो बहुत तेज आवाज होती है। तो श्री राम कहने लगे बड़ा खतरनाक है, और इतना ही नहीं कई राक्षस हैं मनुष्य को खा जाने वाले, डरा रहे थे। कौन डरा रहे हैं, भगवान। जो सबकी रक्षा करते हैं, अपनी ही पत्नी को डरा रहे हैं, कौन तुम्हारी रक्षा करेगा। सीता देवी भी जानती थी ये सब। तो बड़े भयानक हिंसक पशु होते हैं, राक्षस होते हैं, मनुष्य को खा जाते हैं, और फिर कटीले रास्ते होते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं, केवल वृक्षों से जो गिरा हुआ है उसको ही उठाकर खाना होता है, बड़ा कठिन है। वैसे एक दृष्टि से श्री राम जो कह रहे थे वो सत्य था। हम लोगों ने कभी वनवास का अनुभव नहीं किया, इसलिए हमें पता नहीं वनवास क्या होता है। बहुत कष्ट है वनवास में। भगवान 14 वर्ष रहे, एक दिन भी उनकी तरह। हम लोग तो कभी कभी वन में पिकनिक मनाने जाते हैं, सारी चीजें लेकर जाते हैं, पूरा किचन सामग्री, किचन डिपार्टमेंट और सोने के लिए, बैठने के लिए मच्छरदानी वगैरह सारा सब तैयार होकर। रामचंद्र जी कुछ नहीं ले गए थे, कोई मच्छरदानी नहीं थी, कोई किचन डिपार्टमेंट नहीं था। खाते भी क्या थे, जो गिरता था पेड़ से उसको उठा के खाते थे, तोड़ के भी नहीं खाते थे। तो राम ने कहा बड़ा कठिन है जीवन। सीता कहने लगी, डरा दिया श्री रामचंद्र ने कि ऐसा बहुत तकलीफ होगा जंगल में। सीता कहने लगी, अब सीता जान गई कि ये डरा रहे हैं। तो सीता ने कहा कि मैं तो आपके साथ रहूंगी, और आपको देखकर तो अच्छे अच्छे लोग भाग जाएंगे, सारे प्राणी भाग जाएंगे, तो फिर मुझे डर किस बात का, मुझे क्यों भय है। वैसे एक दृष्टि से देखें तो ये जो भौतिक जगत है इसकी तुलना वन से की गई है। संसार दावा नलली ढलोका, इस संसार एक वन के समान है, और सीता उस जीव के समान है जो अगर इस वन में अकेले है तो उस पर हिंसक प्राणियों का आक्रमण होगा, उस पर राक्षसों का आक्रमण होगा, मन नरभक्षियों का आक्रमण होगा, संरक्षण नहीं होगा। लेकिन वही सीता, वही जीव अगर भगवान के साथ है तो देखिए सीता देवी कितना सुंदर ज्ञान दे रही है कि आप है ना, आपको देखकर बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्राणी सब भाग जाएंगे। वो दिखला रही है कि इस जगत में भी, इस वन में भी, इस भौतिक जगत में भी अगर हमें ये विश्वास है, अवश्य राखी बे कृष्ण विश्वास पालन, तो फिर हमारी रक्षा निश्चित है, सुरक्षा निश्चित है। लेकिन अगर ये विश्वास नहीं है तो फिर आप वन में रहो, घर में रहो, कोई सुरक्षा नहीं है। जीवन में एक ही सुरक्षा है और वो है श्री कृष्ण। बस सीता देवी दिखला रही है। सीता देवी को पता था हमारी कोई सेना साथ में नहीं होगी। सीता देवी ने ये नहीं कहा कि अरे आप जाएंगे तो आपके पीछे पीछे सेना भी तो होगी, आप जाएंगे तो और भी लोग आपकी रक्षा करने के लिए, नहीं, आप हैं, मेरी रक्षा हो जाएगी। ये श्रद्धा, ये विश्वास हम सबको होना चाहिए कि अगर हमने श्री कृष्ण को समर्पण किया है, अगर उन्हें स्वामी माना है, तो निश्चित है कि हमारी रक्षा होगी, कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। सरल विश्वास चाहिए। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। महाभारत के युद्ध में जयद्रथ को बचाने का प्रयास किया सब लोगों ने, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, बड़े बड़े महारथी, सबने प्रयास किया, मारे कृष्ण राखे के। लेकिन जिसको कृष्ण मारना चाहते हैं वो कहीं भी पाताल में जाकर भी अगर उस दिन जयद्रथ छुप जाता तो भी उसको मार दिया जाता। और राखे कृष्ण, और जिसकी रक्षा कृष्ण करते हैं उसको कौन मार सकता है। उसी युद्ध में अर्जुन की रक्षा की श्री कृष्ण ने, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समयों पर, कौन मार सका अर्जुन को। ऐसे तो कई भक्तों की रक्षा की, प्रहलाद महाराज कितने अत्याचार किए उनके ही पिता ने, क्या 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 नहीं किया, सांपों के बीच में फेंक दिया, पर्वत के ऊपर से फेंक दिया। नरसिंह पुराण में वर्णन है कि उनको उनके गले में बहुत बड़ा एक पत्थर बांधकर समुद्र के नीचे फेंक दिया, और वो भी तब जब प्रहलाद महाराज सो रहे थे, सोए नहीं थे, वो ध्यान मग्न थे, श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। लेकिन राखे कृष्ण, जिनकी रक्षा कृष्ण करते हैं, हमको अग्नि जला नहीं सकती, समुद्र डुबा नहीं सकता। ये जो भगवद गीता के श्लोक हैं, ये भगवान ने ऐसे ही नहीं कहे हैं, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। प्रहलाद महाराज उदाहरण है उसके, कि जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर है, वैसे भगवान ने वो श्लोक आत्मा के लिए कहा कि नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, लेकिन जो व्यक्ति उस स्तर पर है उसके लिए भी वही है। भगवान ने दिखलाया प्रहलाद की लीला में, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, सारे शस्त्र चलाए दैत्यों ने, आदेश दिया था हिरण्यकश्यपु ने, मार डालो मेरे पुत्र को, सब विफल हो गए। नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। होलिका लेकर बैठी अग्नि में जलाने के लिए प्रहलाद को, ब्रह्मा जी का वरदान है मैं नहीं जलूंगी, जलकर भस्म हो गई, नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो। पानी में पत्थर बांधकर समुद्र में फेंक दिया नीचे प्रहलाद महाराज को। रात्रि के समय गए सैनिक महल में, प्रहलाद महाराज बैठे हैं, सोए नहीं थे। प्रहलाद महाराज इतने महान भक्त थे, दिन में प्रचार किया करते थे, रात में ध्यान किया करते थे श्री कृष्ण का। सैनिकों ने सोचा सो रहे हैं, उठाया प्रहलाद महाराज को, कोई बाहरी चेतना नहीं थी, फेंक दिया ले जाके समुद्र में। प्रहलाद महाराज अभी भी ध्यान में थे। समुद्र देव ने देखा ये क्या, भगवान का इतना महान भक्त यहां पर, अपनी लहरों से उनको बाहर फेंक दिया। जब वो बाहर आए तो प्रणाम करने के लिए स्वयं समुद्र देव आए, साक्षात प्रणाम किया, तो प्रहलाद महाराज की आंख खुली और प्रहलाद महाराज ने पूछा अरे आप यहां कैसे आ गए। समुद्र देव ने कहा मैं नहीं महाराज, आप यहां पर आए हो। इतने प्रहलाद महाराज, पानी से कुछ नहीं, अग्नि से कुछ नहीं, शस्त्रों से कुछ नहीं, तो भगवान रक्षा करते हैं जीव को। केवल विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए, उस संबंध चाहिए, भगवान आते हैं। कई बार लोग कहते किसी ने भगवान देखा नहीं है भी या नहीं। आज हम किसी से बात कर रहे थे बंबई से, किसी का फोन था, तो वो कह रहे थे कि कुछ कष्ट में है, तो कह रहे थे कि प्रभु जी अब मुझे विश्वास नहीं होता कृष्ण है भी कि नहीं। तो मैंने कहा क्यों, बोले बहुत कष्ट है, पता नहीं है भी कि नहीं। मैं जब भी मंदिर जाता हूं उनसे यही पूछता हूं कि बताओ तुम हो या नहीं। तो मैंने कहा किससे पूछते हो, किससे पूछते हो, जब तुम्हें पता है कि वो है ही नहीं तो किससे पूछते हो। इसका अर्थ है तुम जानते हो वो है। मैं रोज मंदिर में यही पूछता हूं जाके कि तुम हो या नहीं बताओ। तो किससे पूछते हो, दीवारों से पूछते हो, पत्थरों से पूछते हो, भगवान से पूछते हो। श्रद्धा चाहिए हमें कि भगवान है, रक्षा करेंगे। लेकिन जब तक ये श्रद्धा परिपूर्ण नहीं है, भगवान परीक्षा लेते हैं। तो सीता देवी ये कहने लगी कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई भय नहीं है। और हाँ, अगर आपको ऐसा लगता हो कि मैं आपके बिना रह सकती हूं, तो मैं आपको वचन देती हूं कि अगर आप जाएंगे तो जैसे ही आप बाहर रखेंगे कदम, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, जहर खा लूंगी, अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, लेकिन अपने प्राण नहीं बना रख सकती। और फिर थोड़ा सा इतिहास बताने लगी। सीता देवी कहती है मैंने बचपन में एक ज्योतिषी से सुना था उन्होंने कहा था कि विवाह के बाद तुम वन में जाओगी, इसलिए मैं वन देखना चाहती हूँ। उस ब्राह्मण का तो वचन पूरा हो जाए कम से कम, इसीलिए वन में ले चलिए मुझे। और फिर देखा कि अभी भी श्री राम पिघल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा बदलाव ले आई। कहने लगी कि अरे लोग आपको, आपकी निंदा करेंगे, अभी तक तो अपने लिए कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, अब कहने लगी कि आपकी निंदा करेंगे लोग, कैसे पुरुष हो आप, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकते, लोग निंदा करेंगे आपकी कि आप छोड़कर चले गए, और वो निंदा को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए अच्छा है कि आप मुझे ले चले। और मैं किसी चीज की आपसे मांग नहीं करूंगी। सीता देवी सोचने लगी कि शायद श्री राम सोच रहे होंगे कि यहां पर इतनी मांगे पूरी कर सकता हूं, वहां कैसे करूंगा, जंगल में कुछ मांग नहीं करूंगी आपसे। इसलिए आप द्वेष को त्याग दीजिए, रोष को त्याग दीजिए। आचार्य टिप्पणी करते हैं कि द्वेष का शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, सीता देवी ने भगवान से क्यों कहा कि द्वेष त्याग दीजिए। हो सकता है भगवान को लगे स्त्री होकर इतनी बड़ी बात कर रही है कि वन में जाएगी, तो ऐसी अगर भावना है तो त्याग दीजिए। रोष कि मैं बोल रहा हूं फिर भी बोल रही है जाएगी, वो भी त्याग दीजिए। मैं केवल आपकी सेवा के लिए जाना चाहती हूं। सीता देवी कहती है मुझे उस तरह रख लीजिए जैसे व्यक्ति एक सूखे प्रदेश में जाता है, उसके पास पानी होता है, थोड़ा सा पीता है, बचा हुआ पानी रख लेता है, ऐसे झूठा पानी समझ के मुझे रख लीजिए साथ में, लेकिन रखिए साथ, छोड़ के मत जाइए। देखिए सीता देवी का भाव, कोई उन्होंने कहा नहीं कि ऐश्वर्य के साथ रखिए, मुझे अपनी पत्नी बनाकर रखिए, कुछ नहीं। बार बार प्रार्थना करने लगी। सीता देवी के मन में यह भी आया कि हो सकता है श्री राम सोचे कि तुम्हें अपने प्रियजनों की याद आएगी, अपने माता पिता की याद आएगी 14 वर्षों में। सीता देवी कहने लगी वचन देती हूं आपको, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगी अपने माता पिता का, और रामायण में वर्णन भी नहीं है कि कभी सीता देवी ने किया आगे वन में जाने के बाद। मैं वचन देती हूं, मैं कभी स्मरण नहीं करूंगी, लेकिन आप ले चलिए। और फिर सीता देवी बहुत रोने लगी, अभी तक तो आंसुओं को संभाले हुई थी, लेकिन अब वाल्मीकि मुनि ने भी बड़ा सुंदर वर्णन किया, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो कमलों से, कमल के पुष्पों से सतत जल की धारा बह रही हो। रोक नहीं पाई सीता देवी अपने आप को, प्रार्थना करने लगी। और फिर श्री राम ने उनसे कहा, सीता देवी बार बार पूछ रही थी आपको किसका भय है, क्यों नहीं ले जाना चाहते, तो श्री राम ने कहा सीता सुनो, मुझे कोई भय नहीं है, मैं किसी से भयभीत नहीं हूं, और मैं तुम्हारी रक्षा भी कर सकता हूं। मैं तो केवल ये जानना चाहता था कि क्या तुम सही में हृदय से मेरे साथ चलना चाहती हो या नहीं। देखिए परीक्षा थी सीता देवी की। रामचंद्र जी पहले ही मन बना चुके थे कि मैं जाऊंगा तो सीता तो जाएंगी जाएंगी, लेकिन फिर भी हो सकता है सीता के मन में अगर पूरी दृढ़ता नहीं है तो नहीं ले जाऊंगा उसे, फिर यहीं छोड़ दूंगा। तो उसकी दृढ़ता देखने के लिए श्री राम ने कहा कि मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ, लेकिन मैं जानना चाहता था कि तुम्हारे हृदय में कितनी दृढ़ता है मेरे साथ चलने के लिए, इसलिए मैं ये बातें कर रहा था। भगवान परीक्षा लेते हैं जीव की, हमने पहले ही बताया सीता देवी हर उस जीव का प्रतिनिधित्व करती हैं जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान कैसी कैसी परीक्षा लेते हैं, सीता देवी को कितने उदाहरण देने पड़े, कितनी मिन्नतें मांगनी पड़ी, ये परीक्षा थी सीता देवी की कि क्या सही में हृदय से दृढ़ता है वन में जाने की, वन में जाने की नहीं श्री राम के साथ रहने की। और श्री राम ने कहा कि अब तक जो मैंने पहले कहा था कि तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, भूल जाओ उसे, मैं तुम्हें वन में लेके जाऊंगा। तो ये होता है, जब भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो हम कितने दृढ़ हैं अपने विश्वास पर, कितने दृढ़ हैं भगवान की सेवा पर, कितने दृढ़ हैं हम कि भगवान को नहीं छोड़ना है। भगवान परीक्षा ले रहे हैं और कोई व्यक्ति नहीं, सीता देवी की कड़ी परीक्षा। ऐसे ही हमारे जीवन में कड़ी परीक्षाएं होती हैं, हम कितना विश्वास करते हैं ऐसी परीक्षाओं पे, श्री कृष्ण के ऊपर। जैसे आज हम बता रहे हैं, हमने जिनसे बात की उनका विश्वास उठ रहा है, श्रद्धा उठ रही है, क्यों कष्ट आए हैं जीवन में, भगवान है या नहीं है। समाज में हम देखते हैं कई बार ऐसे लोग जो गलत चीजों को फैलाते हैं, हमारा भगवान से श्रद्धा उठने लगती है, लोग प्रश्न पूछने लगते हैं भगवान है भी या नहीं है, तो सामने आए। भगवान किसी श्रद्धा विहीन व्यक्ति के सामने नहीं आते, भगवान तो श्रद्धालुओं के सामने भी नहीं आते, भगवान तो भक्तों के सामने आते, जिसके हृदय में भक्ति है, प्रेम है। लेकिन ये जान लेना चाहिए कि जितनी हमारी कड़ी परीक्षा हो, हमें तैयार रहना चाहिए। परीक्षाएं भगवान के निकट लाती हैं, भगवान हमारा हृदय देखते हैं हमारी परीक्षा में, जैसे सीता देवी का देखा। भगवान ने कुछ नहीं कहा, आते ही कह सकते थे कि ठीक है तैयारी करो जाएंगे, सीता ना नहीं कहती, ये भी जानते थे श्री राम, फिर भी परीक्षा। इसी तरह जब हम भगवान के भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें हर परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण हर पग पे हमारी परीक्षा लेंगे और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने की एक ही योग्यता है, सेवा भाव। सीता देवी ने दिखलाया, सीता देवी ने कहा मैं सब कुछ त्यागने तैयार हूं, मैं अपने माता पिता का स्मरण नहीं करूंगी, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे अच्छा अच्छा भोजन नहीं चाहिए, मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे झूठे जल के समान रख लेना। ये सारी चीजें अगर हम लोग एक एक विस्तार से चर्चा करें तो उन्होंने लक्षण दिए हैं एक जीव के जो भगवान को प्राप्त कर सकता। ये तैयारी चाहिए हमारी, हम कितना तैयार हैं। भगवान को पाना चाहते हैं लेकिन हम तैयार नहीं हैं। सीता देवी ने दिखलाया क्या तैयारी होनी चाहिए, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार, केवल श्री राम। अपने संबंधियों को कहा नहीं स्मरण भी नहीं करूंगी, सीता देवी ने कहा आपके आगे चलूंगी सेवा, खाना पीना सोना कुछ नहीं चाहिए, त्याग। सारी भावनाओं को, सारे लक्षणों को सीता देवी ने केवल इस संवाद में प्रस्तुत किया। क्या जीव को चाहिए, क्या एक भक्त को चाहिए, एक साधक को चाहिए, ये गुण ये लक्षण चाहिए। तो सीता देवी इस प्रसंग में ये सिखलाती हैं हमें कि अगर दृढ़ता है, हृदय में सेवा भाव है, तीव्रता है, समर्पण है और प्रेम है, तो चाहे कितने ही बाधाएं आए, चाहे कितनी ही परीक्षाओं को हमें पार करना पड़े, श्री राम श्री कृष्ण हमें प्राप्त होंगे। और फिर रामचंद्र जी ने स्वीकार किया कि ठीक है सीता, अब जल्दी से अपने जितने गहने हैं, जितने आभूषण हैं, इन सबको बांट दो, ब्राह्मणों में बांट दो, अपनी सारी संपत्ति बांट दो। श्री रामचंद्र जब गए थे तो अपनी सारी संपत्ति बांट कर गए थे, इस सब संपत्ति को बांट दो। उसी समय लक्ष्मण आए, अभी तक लक्ष्मण को कहा नहीं था भगवान ने साथ में चलने के लिए। लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने पांव पकड़ लिए, चरण पकड़े श्री राम के, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ठीक है आपने स्वीकार किया है जाना, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री राम ने कहा, लक्ष्मण अगर तुम मेरे साथ आ गए, भरत राजा बनेगा और कैकई के कहने पर अगर कौशल्या को, सुमित्रा को, अगर उसने उनके साथ ठीक से आचरण नहीं किया तो कौन रक्षा करेगा इनकी? कौशल्या की रक्षा कौन करेगा? सुमित्रा की रक्षा कौन करेगा? तुम्हें यहां रहना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कौशल्या देवी मेरे जैसे कई लोगों का भरण पोषण कर सकती है। कई गांव दिए हैं महाराज ने उनको, चिंता नहीं है उनको उनके रक्षण की, लेकिन मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो आगे चलकर भगवान ने भी कैसे अनुमति दी लक्ष्मण को साथ में चलने की, और उसके बाद के प्रसंग बहुत मार्मिक भी हैं और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले हैं, कि जब राम, लक्ष्मण और सीता अपने महल से निकलते हैं और फिर कैसे कैकई के पास जाते हैं, और कैकई का जो संवाद उस समय का है और उनका जाने का जो प्रसंग है, बड़ा हृदय स्पर्शी प्रसंग है। इसको अगली बार वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान के दर्शन और कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा।